मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 25 अक्टूबर 2019 के AFEIS के इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज शुक्रवार है और अब 2 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात होगी और इस बीच में आप हम सब हमारा पूरा देश दीपावली का त्यौहार मना चुका होगा। तो मैं आप सबको एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह दीपावली का पर्व हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सुख समृद्धि और शांति का आधार बने। तो आइए अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। आपको मालूम ही है कि कल मैं डेली ऑडियो लेक्चर के अंतर्गत जो हमारा जनरल स्टडीज का 4th पेपर है इंटीग्रिटी एथिक्स और एप्टीट्यूड का, उसका हम लोग विश्लेषण कर रहे थे। आज मैं आपको जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस पैटर्न के हैं, पिछले साल की तुलना में इस साल उसमें क्या परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बातें करूंगा। जैसा कि यदि आप कल के मेरे ऑडियो की बातों को याद करें तो एक तथ्य आपके ध्यान में होगा कि मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि इस बार के पेपर में ज्यादातर उसने आपको शामिल किया है, उसने यानी कि यूपीएससी ने। यूपीएससी की ये कोशिश रही है कि वो किताबों से हटकर आपसे आपके विचार जाने। देखिए जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, वो आपके पूरे के पूरे उसी से ही है जो यूपीएससी ने प्रस्क्राइब किया है। सिलेबस से बाहर जाकर के वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सीधे सीधे सिलेबस से नहीं पूछ रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट तरीके से पूछने के बावजूद सच पूछिए तो वो सिलेबस का हिस्सा आपको दिखाई नहीं देगा। मैं बात थोड़ी सी अटपटी सी कर रहा हूं और उसी अटपटी बात का अगला वाक्य है कि जबकि वो है सिलेबस में ही। तो मित्रों आइए थोड़े से इसके पैटर्न को देख लेते हैं। एक बात जो मुझे बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही है वो ये कि इस साल का जो पेपर है इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट तरीके के हैं। देखिए जब मैं कहता हूं स्ट्रेट तरीके के हैं तो उसके 2 अर्थ होते हैं। पहला तो यह है कि शुरू में कोई बहुत लंबे चौड़े स्टेटमेंट नहीं दिए गए हैं और इसके बाद आपसे ये नहीं कहा गया है कि अब आप स्टेटमेंट का ये कीजिए, पुष्टि कीजिए, आप औचित्य सिद्ध कीजिए या डिस्कस कीजिए या एग्जामिन कीजिए, इस तरह का नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। इक्के दुक्के भले ही हो, अदरवाइज सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट एकदम सीधे सीधे और वो सीधे प्रश्नों की बात करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं, लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका पर विचार कीजिए। तो अब आप देखिए कि लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं। वैसे सिविल सर्वेंट आपके सिलेबस में है लेकिन वहां कहीं आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि सिविल सर्वेंट की परिभाषा भी आप पढ़िए, और सच पूछिए तो जब आप बुक्स इस पर पढ़ेंगे तो वहां कोई सिविल सर्वेंट की अलग से परिभाषा भी नहीं बताई गई है। लेकिन यहां कह क्या रहे हैं, लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं, आप बताइए कि आप क्या समझते हो। किसी की परिभाषा नहीं मांग रहे कि आप मैक्स वेबर की परिभाषा दीजिए या कार्ल मार्क्स की परिभाषा दीजिए, नॉट एट ऑल, आप बताइए कि आप क्या समझते हैं। और फिर देखिए सीधे सीधे कि लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका पर विचार कीजिए। ये जो प्रत्याशित भूमिका है, ये प्रत्याशित शब्द को आपको समझना पड़ेगा। अगर लोक सेवक की लोकतंत्र में भूमिका पर विचार कीजिए, है ना, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी। आप देखिए कि जनरल स्टडीज का जो 2nd पेपर का आपका सिलेबस है उसमें बकायदे ये पॉइंट दिया हुआ है और इसी के तहत आप सिविल सर्वेंट के बारे में ढेर सारी तैयारियां करते हैं, यानी कि केवल रोल पढ़ करके आप छोड़ देते हैं, तो वो एक अलग बात हो गई। वो एक सिस्टम में वो किस तरीके से काम करता है, किस तरह से वो सिस्टम को मजबूत बना सकता है, किस तरह से वो डेमोक्रेसी को सार्थक सिद्ध कर सकता है, वहां उस रूप में पूछा गया है। लेकिन यहां है एक्सपेक्टेड, प्रत्याशित, कि आप उससे ये उम्मीद कर रहे हैं, अपेक्षित उसकी जो भूमिका है। तो ये जो अपेक्षित भूमिका है, देखिए एक तो सीधे सीधे लिखित भूमिका है, लेकिन लोग उससे कुछ और भी अपेक्षा करते हैं। ये बात अलग है कि उस जो लोगों की अपेक्षा है वो जो लिखित भूमिका है उससे कोई बहुत परे नहीं है, लेकिन अगर आप सीधे सीधे वो जो लिखित भूमिका है उसे लिखकर आ जाएंगे तो एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि नहीं उनके उसके प्रश्न को आपने ठीक से समझा नहीं है। लेकिन आप देखिए कि जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, सिलेबस का होने के बावजूद आप यूं कह लीजिए कि सिलेबस से थोड़ा सा बाहर भी है, यही बात मैं शुरू में कह रहा था। अब मैं पिछले साल के क्वेश्चन पर आता हूं। पिछले साल के जो क्वेश्चन है ज्यादातर क्वेश्चंस स्टेटमेंट पर बेस्ड है, ज्यादातर क्वेश्चन, ये तो नहीं कहूंगा कि सभी क्वेश्चन, लेकिन मैंने देखा है कि लगभग 60% जो क्वेश्चन है पहले स्टेटमेंट होता है और इसके बाद फिर वो आपसे उसका परीक्षण करने के लिए कहेंगे, उसके पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क देने के लिए कहेंगे। उदाहरण के तौर पर आइए मैं एक आपको दे दूं, तो उससे क्या है कि आपके दिमाग में बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। कार्यवाहियों की नैतिकता के संबंध में एक दृष्टिकोण तो यह है कि साधन सर्वोपरि महत्व के होते हैं और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि परिणाम साधनों को उचित सिद्ध करते हैं। आपके विचार में इनमें से कौन सा दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क पेश कीजिए, 150 शब्द। अब आप देखिए कि शुरू में स्टेटमेंट है, तो होता क्या है कि जहां समय की इतनी कमी हो, मारामारी मची हुई हो, एक तो आपको स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम लगता है, चलिए वो तो व्यावहारिक है, कोई इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, फिर आप सोचने में टाइम लगाएंगे कि इसके तहत मैं क्या क्या लिखूं, कौन कौन से पॉइंट्स लेकर के आऊं, और फिर आप लिखेंगे। जबकि जो स्ट्रेट क्वेश्चन होते हैं, देखिए समझने में भी टाइम नहीं लगता है और आपको सोचने में भी समय नहीं देना पड़ता है कि इसमें किन किन को शामिल करना है, और आप सीधे लिखने पर आ जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। हो सकता है कि मेरे इस बात को सुनने के बाद आपको लग रहा हो कि यार ये तो छोटी सी बात है, छोटी सी बात नहीं है। आप जानते हैं कि ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल लेने से चूक जाता है, जिसको सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, पता लगा कि उसका जो टाइम है वो केवल गोल्ड मेडल वाले से 1/10 सेकेंड या 1/100वां सेकेंड ही कम रहा है बस, और ज़्यादा नहीं। तो यहाँ भी प्रतियोगिता लगभग इसी तरह की होती है, इसलिए आपको बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। मैं इस प्रश्न को इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं क्योंकि थोड़ा सा स्टेटमेंट लेंदी ही नहीं है, बल्कि जो ट्रांसलेशन है वो भी कोई बहुत समझ में आने वाला नहीं, इतना आसान नहीं है, इंग्लिश है दोस्तों। विथ रिगार्ड टू द मॉरलिटी ऑफ एक्शंस, वन व्यू इज दैट मींस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड द अदर व्यू इज दैट द एंड्स जस्टिफाई द मींस। विच व्यू डू यू थिंक इज मोर एप्रोप्रिएट? Justify your answer. तो आप मेरी समझ से यह तथ्य आपको बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट हो गया होगा। जहां तक डिवीजन की बात है तो डिवीजन लगभग वही होता है, 250 नंबर का पेपर होता है जिसमें से दो सेक्शन में 120-130 इस तरह का डिवीजन किया जाता है। तो इस बार जो डिवीजन है सेक्शन ए, यानी कि जो सैद्धांतिक प्रश्न पूछे गए हैं उसके लिए 130 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, और जो आपका केस स्टडी वाला हिस्सा है सेक्शन बी, उसके लिए 120 मार्क्स रखे गए हैं। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है, एक मैंने मेजर अंतर आपको बता दिया, लेकिन मैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो जैसा कि मैंने बताया कि सिलेबस के होते हुए भी सिलेबस से बाहर के हैं और स्ट्रेट हैं, इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात इसमें यह है कि आपको लिखने के लिए भरपूर मटेरियल मिलता है और लिखने के लिए पर्याप्त समय भी मिलता है, क्योंकि जटिलताओं में आपको उलझाया नहीं गया है, तो इसीलिए एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है, दोनों है। उन स्टूडेंट्स को नुकसान है जो सही मायने में जटिल प्रश्नों के साथ खेलना पसंद करते हैं, जिनमें मैं अपने आप को समझता हूं। अगर आप मुझे बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन दे दीजिए तो मैं शायद दूसरों की तुलना में कम नंबर पाऊंगा, क्योंकि मैं चीजों को रट नहीं पाता हूं, समझने में मैं माहिर हूं। तो अगर आप जटिल क्वेश्चन दे दीजिए तो चूंकि मेरी समझ है तो मैं उस पर बहुत अच्छा आंसर लिख सकूंगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स को थोड़ा नुकसान होता है। लेकिन जो रट्टा मारने में बहुत सिद्धस्त हैं और जो जटिलताओं से थोड़ा सा परहेज करते हैं, डेफिनेटली उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है, और ज्यादातर स्टूडेंट इसी श्रेणी में होते हैं, तो उन्हें खुश होना चाहिए। जहां तक इस क्वेश्चन पेपर में स्कोर करने की बात है मित्रों, जब आप मेंस में बैठेंगे और जब आपकी मार्कशीट आएगी तो आप पाएंगे कि जनरल स्टडीज के जो चार पेपर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो स्कोर है आपके इसी पेपर में है। यहां तक कि 2013 में जब पहली बार इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया उस समय के आपके स्टूडेंट्स के मार्कशीट उठा करके देखे तो बाकी में तो बहुत पुअर मार्क्स आए हैं। सोचिए कि 250 में 80 85 इस तरह के नंबर आए हैं, लेकिन फोर्थ पेपर में 100 तक वो पहुंच गए हैं। यानी कि यह पेपर स्कोरिंग पेपर है और मैं एक ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जिन्होंने इसी पेपर में 143 मार्क्स स्कोर किए। 143 अच्छे मार्क्स हैं। तो देखिए जो 143 मार्क्स स्कोर हुए हैं, आप इसको अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करके देखें तो परसेंटेज में लगभग लगभग वही बैठेगा जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप स्कोर कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 60% ऑप्शनल पेपर में आपके जो स्कोर हैं वो इन बिटवीन 50-60% होने ही चाहिए। अगर आप फर्स्ट 100 में आना चाहते हैं तो एबव 55 होना चाहिए, और अगर आप सिलेक्शन लिस्ट में आना चाहते हैं तो 50% तक स्कोर होना चाहिए। मतलब एकदम कंपलसरी नहीं है, अगर आप दूसरे पेपर्स में जो जनरल स्टडीज वगैरह में है, ऐसे में है, इंटरव्यू में है, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं तो, अदरवाइज हमेशा कोशिश होनी चाहिए। और ऑप्शनल पेपर के बारे में आपको कोई लिबर्टी लेनी भी नहीं चाहिए। तो आप इस फोर्थ पेपर को कहीं ना कहीं ऑप्शनल पेपर के पैरेलल रख कर चल सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको चलना भी चाहिए। आपकी अपनी जो स्ट्रेटजी तैयार होगी वो इस तरह से हो कि जनरल स्टडीज के जो चार पेपर हैं उनमें तीन पेपर अलग श्रेणी के हैं जिसमें मुझे 110 के आसपास स्कोर करना है, उससे अधिक स्कोर करने में थोड़ी सी दिक्कत भी होगी, लेकिन जो फोर्थ पेपर है इसमें मुझे एबव 50% तो स्कोर करना ही करना है और वो आप कर ले जाएंगे। तो दोस्तों फर्स्ट जो इसका सेक्शन है उसके बारे में मैंने आपसे थोड़ी सी बातें की हैं। अब इसका जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन का मतलब जो केस स्टडी से संबंधित है, दोस्तों केस स्टडी और ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। देखिए जो वेस्ट में पढ़ाई होती है, जो पश्चिमी राष्ट्रों में यूरोपीय देशों में जो पढ़ाई होती है बेसिकली वो केस स्टडी पर ही बेस्ड होती है। थ्योरी आपको बता दी गई, आपको बता दिया गया कि ठीक है ये जो गाड़ी है, ये जो कार है, ये कार इस तरीके से ठीक होती है, इसमें ये सिस्टम है, ये है, इस तरह से एनर्जी जाती है, पेट्रोलियम पदार्थ यहां से जाता है, फिर कैसे वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई, ठीक है। तो क्या यही आपकी जो स्टडी है खत्म हो जाती है? नहीं, आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो प्रैक्टिकल कराने में वो क्या करते हैं, आपको हो सकता है कि आपके हाथ में कार दे दी जाए, आप इसको असेंबल कीजिए या ये खराब हो गई है इसको ठीक कीजिए। यानी कि ये जो केस स्टडी है आप ये समझ लीजिए कि जो आपके एथिक्स इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड है उस पर बेस्ड ही प्रैक्टिकल है। इसके माध्यम से वो ये जानने की कोशिश करते हैं दो चीजें। पहला तो ये है कि जो फर्स्ट पोर्शन है उसको आपने समझा कितना है, क्योंकि जब तक आप उसे समझेंगे नहीं तब तक आप फैसला कैसे देंगे। केस स्टडी में आपको करना क्या, आपको फैसला देना है, आपको नीतियां बतानी है कि आप करेंगे क्या। सिचुएशन दे दी जाती है और फिर आपसे कहा जाता है कि अब बताइए कि आप क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, अगर आपके पास ये मुसीबत आ जाए तो आप कैसे इससे निकलेंगे, ऐसे सिचुएशन। और आपको जो सिचुएशन दी जाएगी वो बहुत सामान्य सिचुएशन नहीं होगी, वो बहुत ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी। जहां तक कॉम्प्लिकेशन का सवाल है यहां एक अंतर और है। पिछले साल के पेपर में जो सिचुएशंस दी गई हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इस बार जो सिचुएशन दी गई है वो उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखिए एकदम स्ट्रेट तो एकदम सरल तो नहीं दे दिया जाएगा, फिर तो कोई भी हल निकाल लेगा, लेकिन आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, आप पब्लिक लाइफ में एंटर कर रहे हैं, आपको लोगों की समस्याओं को सुलझाना है। लोगों से तो अपनी समस्या नहीं सुलझती, वो अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए दूसरों के पास जाते हैं, और आप हैं कि दूसरों की समस्याओं को सुलझाएंगे, और वो भी सामूहिक समस्याएं, ऐसी समस्याएं कि एक पक्ष कुछ कह रहा है, दूसरा पक्ष कुछ कह रहा है, आप कुछ समझ रहे हैं, सरकार कुछ करने को कह रही है, कानून कुछ कह रहा है, इसके बावजूद आपको हल निकालना है। तो आप देख रहे हैं तो जटिलताएं बहुत होती है। इस बार के क्वेश्चन में जटिलताएं बहुत कम है, बहुत सरल तरह की परिस्थितियां हैं और उसमें आपके विचार पूछे गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि इस बार का जो पेपर है वो बहुत अच्छा पेपर है, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। दोस्तों जहां जो हम लोग की 15 दिन की क्लासेस होती है उसमें तो इसके बारे में मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से और विस्तार से बातें करता हूं कि ये जो परिस्थितियां हैं इन्हें आप कैसे समझेंगे, इनमें से कैसे रास्ता निकालेंगे। लेकिन चूंकि डेली ऑडियो लेक्चर की अपनी सीमाएं होती हैं और अपना स्वरूप भी है तो उनकी चर्चा करना मेरे लिए अभी फिलहाल संभव नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने जनरल स्टडीज के जो चारों पेपर हैं इनका विस्तार के साथ विश्लेषण किया है। एक एक एपिसोड में भी किया जा सकता था लेकिन मुझे लगा कि उससे बात अधूरी रह जाएगी और अधूरी बात करने से ज़्यादा बेहतर है कि बात ही न की जाए। तो मैं आप लोगों से इस बात के लिए थोड़ी सी माफ़ी भी मांगूंगा कि अगर मैंने ज़्यादा विस्तार से आप लोगों से बातें की हैं तो विश्वास कीजिए वो आपके ही हित में की हैं। हो सकता है कि इतना समय आप जो दे रहे हैं उसके लिए थोड़ी से आपके मन में नाराजगी भी हो। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करना चाहूँगा और अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।